ओम शांति। हम सबके समक्ष हमारी अति आदरणीय परम श्रद्धे परम विभूति जयंती दीदी जी पहुंचे हैं। हम सभी करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जीवन को महकाया आपने ज्ञान के चंदन से, देश ही नहीं विदेश भी धन्य है आपकी पालना से। आप ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, यूके और मिडिल ईस्ट सेवा केंद्रों की डायरेक्टर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी आप सदस्य हैं, परम श्रद्धे आदरणीय दादी जानकी जी के अंग संग रहकर आपने पूरे विदेश की सेवा की है। अल्प आयु में ही मम्मा बाबा की आपको बहुत पालना ली, आपका पूरा परिवार लौकिक परिवार ही ज्ञान में रहा। आपको देखकर ही ब्रह्मा बाबा साकार बाबा ने परख लिया था कि ये बच्ची आगे जाकर के बहुत सेवा करेगी, और सचमुच दीदी ने बहुत सेवा की। जैसा नाम वैसा ही दीदी का स्वरूप है। भगवान भी जिसका गुणगान करे आप वो फरिश्ता है। बेहद यज्ञ की कोहिनूर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं, और नारी संगठन की आप सबसे ऊंची मिसाल है। आपने देश विदेश में शिव बाबा के ज्ञान का झंडा लहराया, अनेक आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखाया। सचमुच इस शिव जयंती में हमें अनोखा उपहार मिला, जो आज ही हमें आदरणीय जयंती दीदी जी का क्लास मिला। तो आज के क्लास का विषय ही है हाईएस्ट होलीएस्ट और रिचेस्ट ब्राह्मण जीवन। इस पर दीदी जी आप सभी का क्लास कराएंगे। आदरणीय जयंती दीदी।
ओम शांति। बाबा हम सबका कितना गुणगान करते हैं, जिसको हमने भक्ति में याद किया, प्रार्थना की, पुकारा, और हमने उसका गुणगान किया। संगम युग में हम सबका भाग्य है जो बाबा हमें बहुत ऊंचा नशा चढ़ाते हैं और हमें सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ टाइटल्स भी देते हैं। तो ये जब मुली चली थी करीब 2 सप्ताह पहले, मैं समझती वो किसी को भूली नहीं होंगी। मैं ठीक कह रही हूं? किसको याद है? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। मैंने तो सोचा कि सबको याद होगा, क्योंकि कौन है जो ऐसे हमें पुकारे कि आप ही हाईएस्ट हो, आप ही होलीएस्ट हो, आप ही रिचेस्ट हो। यदि उसमें से 3 टाइटल्स में से किसी एक व्यक्ति को भी टाइटल मिलता तो वो तो बिल्कुल अपने को संसार से ऊपर समझता। और बाबा ने हम सभी को ये 3 ही टाइटल्स दिए हैं, और एक एक टाइटल का बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रहस्य भी बताया है। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम हाईएस्ट हैं, किसी व्यक्ति के कर्तव्य को देख करके कहेंगे कि ये तो बहुत ऊंची आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, या किसी के परिवार में कोई ऐसे बच्चा जन्म लेता तो परिवार के लिए भी कहेंगे कि परिवार इतना सुंदर भाग्यशाली है, या बच्चा भी इतना हाईएस्ट है, जो गोल्डन स्पून इन द माउथ कहेंगे, बिल्कुल इतना श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया। या यदि कोई एजुकेशन में बहुत ऊंच स्थिति को प्राप्त करे तो भी कहेंगे ये तो सबसे श्रेष्ठ है, हाईएस्ट है, ऊंचे ते ऊंचे है। और बाबा ने हम सभी को कौन सी स्मृति दिलाई कि परम धाम में भी कौन सी आत्माएं हैं जो भगवान के बिल्कुल नजदीक ते नजदीक, समीप ते समीप हो। वो कौन है आप बताओ? हम हैं, बाबा के हम सब बच्चे ऐसे हैं जिन्हों को बाबा ने हाईएस्ट बनाया है। तो आप अपने लिए ताली बजाओ, हम कितने ऊंचे हैं। मधुबन में आते ही आप लोगों को बाबा की स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा ने आपको किस दृष्टि से देखा है। तो बाबा की दृष्टि हम सबके प्रति है कि ये हमारे सबसे समीपते समीप बच्चे हैं, यही बच्चे हैं जिन्होंने कलक पहले भी कौन सा कार्य किया था, सत्य की स्थापना का कार्य किया था। हाईएस्ट कार्य, कोई छोटा सा मकान बनाता उसका अवार्ड मिलता, या जैसे बताया एजुकेशन में कोई और आगे बढ़ता उसके लिए उसको बहुत खुशी होती। और हम बाबा के बच्चे स्वर्ग की स्थापना के कार्य में अपना तन मन धन देकर मन वचन कर्म को श्रेष्ठ इतना बनाते हैं जो संसार का ही परिवर्तन हो जाता। भगवान तो जादूगर है ही, परंतु भगवान अपने बच्चों के बिगर वो जादू का खेल नहीं करते। ये भी भगवान की ही महानता है कि हम सबको चांस देते। यदि भगवान चाहे तो स्वर्ग तो एक चपटी में कर सकता, परंतु भगवान चाहता है कि हम सब अपना इतना ऊंचा भाग्य बनाएं। तो इस कारण से बाबा हमें कहते हैं कि आप ही हाईएस्ट हो, ऊंचे ते ऊंचे हो, आप ही हमें मदद करते हो स्वर्ग की स्थापना के कार्य में। और आप देखो कल्प वृक्ष का चित्र, तो कल्प वृक्ष के चित्र में कौन बैठे हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे बिल्कुल वहां पर नीचे बैठे हैं। और वहां पर बाबा कहते हैं कि आप ही ऐसे हो जो बिल्कुल स्वर्ग के स्थापना के कार्य में आप रूट्स हो, सारे कल्प वृक्ष के आप रूट्स हो। जबकि इतना बड़ा कार्य बाबा ने हमें दिया है और हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो जितना हम उस नशे में रहेंगे कि हम कौन है, तो हमें खुशी भी होंगी, परंतु भगवान हमारे द्वारा वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य भी करा सकेंगे। हमारी स्थिति कभी भी थोड़ी नीचे हो जाए तो आप ये मुरली को याद जरूर करना। वैसे तो नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज बाबा हमें बहुत ऊंचा चराते हैं, उठाते हैं, परंतु हो सकता है कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कभी कुछ तबीयत की बात नीचे ऊपर हो जाए, तो आप इसी मुरली को याद करना और अपने ये टाइटल्स याद करना। और न सिर्फ टाइटल्स याद करने की बात है, परंतु उस फीलिंग को इमर्ज करना। जब परम धाम में है बिल्कुल भगवान के समीप ते समीप सितारे हैं, और जब इस धरती पर भगवान आते हैं कार्य करने के लिए, हम उनों के साथ साथ बिल्कुल रूट्स का कार्य करते हैं। बीज तो बहुत नीचे हैं और रूट्स भी वैसे छिपे हुए हैं, बाहर से किसको नजर नहीं आता कि ये रूट्स क्या कार्य कर रहे हैं। और रूट्स को खोद के भी देखो तो ऐसे नहीं लगता है कि कोई इससे इतना सुंदर वृक्ष जिसमें इतने फूल इतने फल निकल रहे हैं कोई ये वो काम कर रहे हैं, परंतु रूट्स जितने गहरे होंगे, कोई सूरत मूरत रूट्स की अच्छी नहीं होती, परंतु रूट्स का काम बड़ा जबरदस्त होता। क्यों? क्योंकि जितनी उनों की गहराई होंगी उतना वो वृक्ष मजबूत होगा, और कितना भी आंधी आए तूफान आए वो हिलेगा परंतु टूटेगा नहीं, हिलना भले परंतु टूटना नहीं। तो ये है वृक्ष का काम, सारे वृक्ष को सारे विश्व की आत्माओं को सहारा देना, उनों को सब कुछ पहुंचाना। रूट्स क्या काम करते, वो पानी ताकत शक्ति जो कुछ भी है उनों को जो उनों को चाहिए वो वहां नीचे से धरती से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक जो भी ऊंचे ते ऊंचे वृक्ष में पत्ते हैं वहां तक उसकी शक्ति पहुंच जाती। तो बाबा के हम सब बच्चे जितना हम गहराई से तपस्या करते हैं, आप अंदर ही अंदर जाकर के अपने अंदर झांक के देखो हमने बाबा से कितना खजाना लिया है, और अब हमारा कार्य क्या है कि हम सबको वो शक्ति देते जाएं, वो वो जल पानी भी देवे और साथ साथ फिर उनको ताकत भी देवे। तो अभी हमें वो नशा है कि हम हाईएस्ट से हाईएस्ट है, परंतु साथ ही साथ हमें ये भी नशा हो, कई संसार में बहुत ऊंची गिने जाते हैं एजुकेशन या परिवार के हिसाब से, परंतु उनमें वो कोई पवित्रता की शक्ति नहीं है। और बाबा के बच्चे न सिर्फ ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ बाबा के बच्चों की शक्ति कौन सी है? आज सवेरे बाबा ने किस शक्ति का वर्णन किया? पवित्रता की शक्ति। तो जिस आत्मा के अंदर ऊंचा कार्य करने की भी क्षमता हो और फिर साथ साथ इतनी पवित्रता की शक्ति हो, जो वैसे तो धरती पर जब देवताएं हैं वैसे कोई उस समय पूजा करने वाला नहीं होता, सभी ने अपना ऊंच पद प्राप्त कर लिया, परंतु फिर जब भक्ति शुरू होती पहले तो हम सभी मीठे प्यारे भोलानाथ शिव बाबा की भक्ति शुरू करते, परंतु फिर नेक्स्ट किसकी भक्ति होती? देवताओं की। और जो आत्माएं देव आत्माएं थे वो ही अपने उस पूजनीय स्वरूप को याद कर उनकी पूजा करते। आज तक भी जो पूजा हो रही है देवताओं की, बहुत भावना से, बहुत प्यार से। और जब जब त्योहार होता है, एक शिव जयंती का त्योहार है जो थोड़ा गंभीरता से चलता है, क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने आकर के बिल्कुल हमें पवित्र जीवन बना करके त्याग और तपस्या और सेवा की जीवन दी। परंतु बाकी सब जो देवताओं के त्योहार होते हैं, नाचते गाते खुशी मनाते कितना सब कुछ करते, क्यों? क्योंकि ऐसे आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, जिन्होंने ऐसी सेवा की है। देवता स्टेज पीछे प्राप्त किया, ब्राह्मण तो रूट्स के कारण गुप्त रहे, परंतु जिस समय फिर देवताओं का राज्य चला, वो तो जैसे बताया कि देवताओं के राज्य में क्या होगा, खुशी में नाचना गाना प्रभु का गुणगान भी तो भूल जाते, भक्ति में प्रभु का गुणगान करते, सत्युग त्रेता में बस उस मौज में होते। और फिर जिस घड़ी थोड़ा सा भी दुख शुरू हुआ, बाबा की याद आई, परंतु फिर साथ साथ जिन्होंने बाबा के संग सेवा की और ऐसे अपनी स्थिति को पूज्य समान बनाया, तो उन आत्माओं की कितनी श्रेष्ठ पूजा होती। भारत में मैं एक स्थान पर गई थी जहाँ पर खूब सारे देवी देवताओं का सारी लाइन थी, तो बता रहे थे कि पुजारी जब नया कोई आता है उनको सारा पुस्तक याद करना पड़ता है, कि क्योंकि हर रोज हर देवी देवता का जो कपड़े हैं जो गहने हैं वो बदलते हैं, हर रोज नया नया नया। उसमें भी फिर उन्होंने क्या बताया कि यदि पुजारी को वो बात याद नहीं रहती कि किस सीक्वेंस में उस देवी देवता की पूजा करनी है, यदि पहले कान का डाल दिया और हार नहीं डाला तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं। और जबकि वो पुजारी अपना अच्छी तरह से वो सारा पुस्तक अध्ययन करके अपने दिमाग में रख करके फिर एक एक चीज नंबरवार वो करता जाए तो फिर वो चीज टिकती है, तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये पुजारी ठीक कर रहा है या नहीं। तो मैंने सुना कि ये भी अच्छी बात है कि ये देवताओं ने कितना हर समय अपनी दिनचर्या को इतना एक्यूरेट बना करके रखा है, सवेरे क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, एक एक समय की एक एक बात एक्यूरेट, तो ही फिर इतनी एक्यूरेसी से उनकी पूजा भी आज तक चल रही है। भक्ति भी कमाल की है, परंतु ये प्रैक्टिकल एक मंदिर की कहानी मैं सुना रही हूँ। तो कहने का मतलब, पूज्य में भी बिल्कुल श्रेष्ठ पूज्य, जिस तरीके से देवताओं की बहुत शुद्धि से, बहुत सफाई से सब कुछ तैयारी होती है और फिर उनको वो भोग लगाया जाता है, वो भी आप सोचो, जिस देवी देवता ने अपने पुरुषार्थी जीवन में बाबा को इतना प्यार से, इतनी श्रद्धा भावना से, इतनी स्वच्छता से, हर प्रकार का नियम पालन करते, जैसे बाबा ने आज अंडरलाइन किया, न सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत की बात है, परंतु हर मर्यादा जिस द्वारा अपना मन वचन कर्म श्रेष्ठ बने, हर मर्यादा को पालन करते इतना अपना ऊंच पूज पूज्य स्वरूप धारण किया, वो है कौन सी आत्माएं? कौन सी आत्माएं? हम सब। ये आपकी ही कहानी है, ये और किसी की कहानी नहीं है, आपकी ही कहानी है। तो आप सुन करके आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कहानी है, या आप सोचते हैं कि ये तो 108 माला के दाने वालों की कहानी है और हम सब तो बहुत बड़ी संख्या में है, इसमें से 108 कौन बनेगा क्या मालूम। परंतु नहीं, हर एक ये सोचे कि ये मेरी ही कहानी है, जो बाबा ने जिस प्यार से बताया है कि आप होलियस्ट हो। बाबा ये नहीं कहा कि 108 होलियस्ट है, बाबा ने कहा सब हमारे बच्चे इतने ही होलियस्ट हैं। मैं क्यों इस बात को अंडरलाइन करती हूँ कि कई बार हम अपने को साधारण समझ लेते, हम अपनी स्थिति जितनी ऊंची बाबा बता रहे हैं उस घड़ी तो प्यार से हम सुनते हैं और हमारा कांध भी होता है, जी बाबा, हाँ बाबा, परंतु फिर संसार में रहते अनेक और बातें दिमाग में आती है तो फिर ये बातें भूल जाती। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नहीं, आज की ही मुरली में था कि ज्ञान किसकी बुद्धि में बैठेगा, ज्ञान उनों की बुद्धि में बैठेगा जिनका सोने का बर्तन होगा। अपने बुद्धि को सोने का बर्तन बनाते रह जाओ पुरुषार्थ करके और सब कचरा निकलता जाए, ज्ञान अमृत ही यहाँ टिके, तो फिर हाँ ये बातें याद भी रहेंगी और दिन भर आपका चेहरा बिल्कुल जैसे देवताएं का कभी और कुछ मूड नहीं देखते। आप सोचो सत्युग में पहुंच जाओ जब आपको सर्व सुख मौजूद है, तन का, मन का, धन का, संबंध का, जन का, तो क्या आपका कभी मूड ऑफ होगा? संभव ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। देवताओं जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, प्यार से याद करते हैं, उनका कभी मूड ऑफ तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारा कैसे चेहरा होना चाहिए? हम याद करें कि हम वही देवता थे, आज भी मुझे वही पुरुषार्थ करके देवता स्वरूप धारण करना है, तो अभी ही आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा और कोई भी बात आएंगी आपकी स्थिति ऊपर बात नीचे। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिसकी बुद्धि में बातें हैं वहां बाप नहीं होगा, जिसके बुद्धि में बाप है वो फिर और बातें नहीं होंगी। तो हम इतनी अपनी स्थिति ऊंची बनाएं, होलियस्ट बनाएं, जिसमें बाबा हमारे बुद्धि में, बाबा हमारे आंखों के सामने, बाबा की बातें हमारे मुख पर, हमारी बुद्धि इतनी ऊंची होलियस्ट बन जाए। आज के जो साधु सन्यासी महात्माएं हैं वो भी जब यहाँ आते हैं मधुबन में, चाहे यहाँ चाहे ऊपर, वो यही वर्णन करते हैं कि जितनी पवित्रता का अनुभव हम यहाँ करते और किसी जगह हमने ऐसे पवित्रता का अनुभव नहीं किया। मुझे याद आता कि जब 80s में, मैं समझती शायद 87, 88 की बात होंगी, जब पहले बारी दादियों ने, बाबा ने साधुओं को निमंत्रण दिया था कि मधुबन आए, और जब वो आए थे पहले तो कई बारी टीचर्स कहते थे पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कौन आएगा, परंतु जहाँ जहाँ पर जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन आत्माओं की सेवा की थी, जैसे हरिद्वार में अपनी प्रेम बहन ने बहुत अच्छी की थी, सुरेंद्र बहन ने बनारस में बहुत अच्छी की थी और अनेक और भी थे, परंतु जब उनको निमंत्रण देने गए, क्योंकि उन्होंने इन बहनों के जीवन को देखा था कि पहले साधुओं ने उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, परंतु फिर उनकी जीवन देखते, उनकी स्थिरता देखते, उनकी पवित्रता देख करके उनको संकल्प आया कि हाँ, हम आपके साथ चलेंगे, आबू जरूर आएंगे। तो आए यहाँ आबू में, और वैसे तो आप सोचो कि एक एक महात्मा गुरु स्वामी के साथ कितनी पलटन होती है, कितनों को संभालना, किस तरह से करना, और कई थे जिन्होंने कहा हम खुद जाकर के अपना भोजन बनाएंगे, हमारे चेले लोग आए हैं हमारे साथ। फिर जब उनको चक्कर लगाया और उन्होंने देखा कैसे हर एक, जो भी भंडारे में तो क्या, जो भी बाबा के घर में है, सब ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करने वाले हैं, तो उन्होंने खुद ही कहा हाँ ठीक है, हम आपका ही बनाया हुआ भोजन खाएंगे। परंतु और आप लोगों को कौन सा भोजन मिलता, वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ पवित्रता का, जिन आत्माओं ने इतने डेकेड्स का, कितने समय से अपना पवित्रता का व्रत धारण करके बाबा को भोग बनाते हैं और हम सब उसको स्वीकार करते हैं। परंतु लास्ट में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक जो मुखिया आया था, वो दादी ने उसको, कोई पहले ही गए थे, कोई बीच में गए थे, ये लास्ट तक रुका था, तो जो भी लास्ट तक रुके, दादी जी ने उनको ओम शांति भवन की स्टेज पर बुला करके उन्होंने कहा, उनको बोला कि आप अपना अनुभव सुनाओ। तो ये जो मुख्य स्वामी था, उसने क्या बताया, पहले तो दादी के सामने आकर के सिर झुका करके, हाथ जोड़ के दादी को प्रणाम किया, तो दादी तो जरूरत नहीं थी, परंतु दादी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं तो बहन हूँ, परंतु वो ऐसे किया। फिर ब्रह्मा बाबा का जो चित्र है बाजू में, वहां जाकर के ऐसे किया, फिर अपने गद्दी पर आया और कहता है कि मैंने कल रात्रि को 2 बजे रहता था सुखधाम में, सुखधाम से फिर यहाँ पर आया पांडव भवन में, तो कहता है कि रात्रि को 2 बजे मैं आया, और उस समय आपका जो पहरे वाला था उसने मुझे पहचान लिया, मुझे अंदर आने दिया, तो मैं यहाँ चक्कर लगाता रहा। क्यों? क्योंकि वो जो समय है, उस समय पता चलता कि यहाँ के वाइब्रेशंस किस तरह के हैं, और जो मैंने उस समय यहाँ के वाइब्रेशंस को महसूस किया, मैंने कहा कि ये तो ब्रह्मा बाप की कमाल है, जो ऐसे आत्माओं को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है, जो आज दादी माँ हम सबकी संभाल कर रही है और इस तरह से हमें भी अनुभव करा रही है। तो दादी ने तो दादी भी इशारा बाबा की तरफ ही करती रही कि ये बाबा का ही कार्य, बाबा ने ही सब कुछ किया, और फिर तो उसने माताओं की भी बहुत महिमा की। तो कहने का मतलब कि जिस क्वालिटी की पवित्रता बाबा ने हमें अनुभव कराई है, और जिस राह पर हम हैं, जिसमें एक एक पूर्व जन्म का बिल्कुल हिसाब किताब हमारा चुप्त हो जाए, उस तरह से आप सोचो कि बाबा हमें कैसे बना रहे हैं, पावनते अति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऐसे बना रहे हैं जो बिल्कुल संपूर्ण पवित्रता क्या है, बाबा हमें वो अनुभव कराते हैं और उस स्थिति पर लाते हैं जिसमें बाबा ये कहते हैं कि संकल्प में भी कोई भी अपवित्रता न टच करे, अपने स्वप्न में भी कोई ऐसी बात न आए। क्योंकि कहते हैं दिन बीते सो स्वप्न बीत, दिन में कुछ ऐसे संकल्प चलेंगे तो रात्रि को भी वही संकल्प स्वप्न में आते रहेंगे। क्योंकि वो समय होता है बुद्धि को प्रोसेस करने का, दिन भर क्या रहा और फिर रात्रि को वही चलता रहेगा। तो हम कितने लकी हैं कि बाबा ने हमें होलीस्ट बनने का मौका दिया है और बाबा हम सबके ऊपर खुद ही इतना प्यार से मेहनत करके हमें हर रोज शिक्षा देते हैं जिससे हमारी स्थिति इतनी होलीस्ट ऑफ द होली बन सके। और फिर तीसरी बात जो बाबा ने कहा, रिचेस्ट, सबसे शाहूकार थे शाहूकार कौन है, कौन है, हम है, हम सब। क्योंकि जो ऑलमाइटी बाप है, जो सारे विश्व का रचयिता है, जिसके हाथ में कहेंगे सर्व शक्तियां सर्व गुण, बिल्कुल सागर के समान बाप है, तो उसने सब कुछ हम बच्चों को दे दिया। इतना भी कहेंगे जो भक्ति में गायन आता, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो जब लास्ट के दिन थे अव्यक्त बाप दादा के पधरामने के, उसमें कई बार बाबा ये शब्द कहते थे, बाबा ने तो सब कुछ समझा लिया, बाबा ने तो सब कुछ बता दिया, बच्चों के सामने बाबा ने सब कुछ रखा है और जितना बच्चों को सागर से लेना है ले सकते। तो जैसे कि बाबा की मुरलियां 10-11 पेज की 3-4 पेज तक पहुंची और फिर उसमें से भी एक पेज तक, उसमें से भी आधी पेज तक, फिर बाबा तो बस इतना ही बोलते थे, बाकी तो बाबा दृष्टि देख करके सबको भरपूर करते थे। तो बाबा का उस समय मुझे वो बात याद आती थी कि बाबा ने सब कुछ दे दिया, सागर के अंदर जो कुछ खजाना था चिड़ियों ने हप कर लिया। कौन सी चिड़िया, अभी थोड़ी जागृति आ रही है, अभी आप बता रहे हैं कि हम वही है। तो सचमुच बाबा ने कैसे हमें कहां से कहां पहुंचाया है। लास्ट जन्म में हमारी स्थिति क्या हो गई थी, न वो शक्ति रही थी, न तन की, न मन की, न धन की, न वो गुण रहे थे, सब बातों में कहेंगे आत्मा खाली हो गई थी। और बाबा ने कितना जल्दी आत्मा को भरपूर कर लिया, और न सिर्फ भरपूर किया, बाबा ने कहा आपको तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जो कुछ बाबा के पास है बाबा ने सब कुछ बच्चों को दे दिया। तो जैसा बाप कल्याणकारी, क्यों, क्योंकि भगवान को किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए क्या रखा बाबा ने, बस अपने लिए तो शांति का सागर, शांति धाम में जाकर के निवास करते और लास्ट में थोड़े समय के लिए बच्चों के पास मिलने के लिए आते और फिर बच्चों को इतना ऊंच चढ़ा लेते। तो बाबा को मन में अपने प्रति कभी भी कुछ संकल्प नहीं, परंतु न सिर्फ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए भी हम कहेंगे, पहले तो बाबा के मन में था मुझे पुरुषार्थ करके ऐसे नंबर वन स्टेज तक पहुंचना है, और जब वो पुरुषार्थ भी संपन्न हो गया बाबा अव्यक्त वतन में बाबा के साथ रहे। और फिर अव्यक्त वतन से भी जैसे शिव बाबा सब कुछ करते अपने को छुपा लिया, सब कुछ करते देते अकर्ता अभोक्ता कहलाया, इसी तरह से ब्रह्मा बाबा भी अकर्ता, कार्य करते परंतु उसका रिजल्ट बाबा ने स्वीकार नहीं किया। वतन में आप सोचो, ब्रह्मा बाबा ने अपनी अव्यक्त स्थिति किस समय पाई, कितना समय हो गया, और फिर उसके बाद भी इतने वर्षों तक बाबा का श्रेष्ठ कर्म चलता रहा, आज तक भी चल रहा। तभी आप सब भाग भाग करके अपने स्थानों से मधुबन में आकर पहुंचे हैं, बाबा के आकर्षण से आप लोग आते हो। बाबा देखने में नहीं आता, परंतु बाबा तो हाजिर नाजिर है ही, तो बाबा ने आप सबको खींच करके यहाँ बुला लिया। तो बाबा वतन से अपना बहुत फास्ट स्पीड से कार्य कर रहे हैं, और उसमें अपने खाते के लिए नहीं, बस करता जाए, कुछ अपना खाता नहीं। तो यदि हम बाबा के बच्चे ऐसे कल्याणकारी बनने चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमें ये बहुत ऊंचा टाइटल देते, आज का ऊंचा टाइटल था मास्टर गॉड, मास्टर भगवान। लक्ष्मी नारायण के लिए तो कहेंगे ये गॉड गॉडेस है, परंतु बाबा के सब बच्चों के लिए आज बाबा ने कहा मास्टर गॉड। और उसमें भी फिर मैं ये सोचती हूँ कि मास्टर गॉड इतना ऊंचा अपना टाइटल बाबा बच्चों को दे रहे हैं, उसमें शिव नाम तो प्रसिद्ध ही है, और अभी शिवरात्रि भी हम मनाने जा रहे हैं, या बहुत कुछ मना भी चुके हैं, कितने झंडों का बाबा के घर में कार्य चल चुका है, परंतु साथ साथ हम यहाँ भी स्टेज पर भी बाबा को देखेंगे कैसे बाबा ने झंडा लहराया था। परंतु कल्याणकारी, शिव का मतलब ही है कल्याणकारी, बीज रूप बिंदु, ये तीन हम कहते हैं। तो यदि हम बाप समान बनने चाहते हैं, तो जितना जितना बिंदु रूप को याद करेंगे, पहले तो जैसे बाबा ने कहा richest, एक लगाओ उसके साथ जीरो, जितना जीरो लगाते जाएंगे मल्टीप्लाई होता जाएगा, कितने भाग्यशाली होंगे, कितने करोड़पति तो क्या बिलियनर्स बन जाएंगे। तो रिचेस तो उस हिसाब से हमारी बाबा की याद की कमाई तो होंगी ही, परंतु सचमुच बीज रूप स्थिति, बिल्कुल हर बात को हम समेट लेवें, बाकी एक बाबा और बाबा की सेवा, और कुछ संकल्प न हो। और उसमें भी फिर बाबा कल्याणकारी, क्या हम कल्याणकारी बाप समान बन सकते? बाबा कहते हैं हाँ बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। और जब हम ये सोचते हैं कि मुझे हर आत्मा के प्रति यही भावना रखनी है, कल्याण की भावना, कल्याणकारी हम कैसे बनेंगे? पहले तो जो बाबा से मिल रहा है हम अपने में भरते चले। और हाँ, हम पहले तो बाबा के पास आते हैं तो सोचते हैं जो कुछ हमसे हो सके, सेवा हो सके, हम सेवा करते चले। बाबा के सामने हम कहते हैं कि बाबा जो आप हमसे कराओ हम करने के लिए तैयार हैं। परंतु न सिर्फ मददगार बने बाबा के कार्य में, परंतु हम निमित्त बने, मतलब कोई भी बात की जिम्मेवारी उठाए। निमित्त बनना सिर्फ टीचर्स की बात नहीं होती, बाबा का कितना बेहद का कार्य है। मानो कि जो टोली बनाते हैं, टोली बनाने वाले भी यहाँ सामने बैठे हैं, तो मानो टोली भी बनाते हैं हजारों की संख्या में, और यहाँ मधुबन में तो मल्टी थाउजेंड्स के लिए टोली बनती है, परंतु जिम्मेवारी मुझे ये कार्य करना है, किस तरह से एक्यूरेट करना है, कोई भी कार्य हो। भगवान का कार्य नई दुनिया बनाने का कितना बेहद का कार्य है, उसमें छोटा भी काम हो सकता, बड़ा भी काम हो सकता, परंतु एक एक जो कार्य के निमित्त बनता, निमित्त बनने का बहुत फायदा होता, क्योंकि निमित्त बने तो बाबा की मदद मिले। परंतु उससे भी और आगे की स्टेज, जैसे बाप कल्याणकारी, हम कैसे ऐसे बन सकते जबकि हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ बिल्कुल क्लियर हो। मनुष्य का कहां पर भी प्रभाव न हो, यदि अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हम कहते हैं कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, परंतु बाबा कहते वो भी न्यारे हैं, आप भी न्यारे रहो। जिसने जो सेवा की हमारी, उन्होंने तो अपना भाग्य कमाया, परंतु हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़े? एक शिव बाबा का। जबकि बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते इसको भी याद न करो, तो किसी को भी निमित्त बना करके बाबा ने हमारी सेवा कराई, बहुत बहुत थैंक्स। परंतु बाबा का प्रभाव हमारे ऊपर हो तो ही बुद्धि फिर बिल्कुल क्लीन रहेंगी और क्लियर, कोई हमारा व्यर्थ संकल्प न हो। गलत कोई कर रहा है तो भी देखते शिव बाबा जिम्मेवार है, हाँ हम कुछ कह सकते वो सुनने के लिए तैयार हो तो हम इतनी नम्रता से, इतना प्यारापन से हम उन्हों को कुछ समझाएं तो भले करें, परंतु मेरा फालतू संकल्प चले, हम कुछ उसके लिए कर भी ना सके और हम फिर या न सिर्फ जो बात संकल्प में आती है वो मुख पर भी आ जाती, आगे पीछे यही देखा गया है, संकल्प से वो चेहरे पर भी आता वो मुख पर भी आ जाता, तो वो फिर क्लियर हमारी बुद्धि नहीं रहेंगी। और जब हम चाहें बाबा के साथ एक सेकंड में हमारा संकल्प जुट जाए ताकि बाबा को जो मेरे द्वारा देना है किसी को बाबा वो देता रहे, उसमें हाँ हमें बाबा की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हमें जिनों की सेवा की उनों के आशीर्वाद भी मिलेंगे, गुड विशेस भी मिलेंगे, परंतु मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। आज की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें थी कि बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं के द्वारा सेवा करते हैं, कभी किसको इतना समझाने का अनुभव भी नहीं है, परंतु कोई ऐसी आत्मा सामने आती तो भी बाबा उसको टच करके उसके द्वारा कुछ करा लेता। तो कल्याणकारी जैसे बाप, हमें मन में अपने प्रति कुछ इच्छा न हो कि मुझे इसके द्वारा ये प्राप्ति हो वो प्राप्ति हो, इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? क्योंकि हम तो है ही रिचिस्ट, भगवान ने दरवाजा खोल के दिया है खजाने का, हमने अपने को भरपूर किया, मुझे मनुष्य से क्या चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बाबा ने सब कुछ दे दिया। तो हम अपने खजाने को हर रोज देखें। बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना। परंतु साथ साथ इस समय बाबा ने ये भी ध्यान खिंचवाया कि वैसे भी लोग ये मानते हैं टाइम इज मनी कहते हैं ना लोग, परंतु न सिर्फ समय इतना कीमती है, हमारे लिए संगम युग, छोटा सा युग, लीप युग, डायमंड युग, कोई भी शब्द कहो, परंतु इतना छोटे से युग में इतना अविनाशी बैंक में हम अपना खजाना जमा करते हैं जो सारे कल्प के अंत तक हमें वो खजाना साथ देता, न सिर्फ सत्युक्त रेता तक। आप सोचो कि लास्ट जन्म जो हमारा 83rd जन्म था, कहाँ पहुंचे हुए थे? कंपैरिजन में सत्युग से तो कहेंगे बिल्कुल नीचे तक आ गए थे, परंतु नीचे तक आते भी विश्व की हालतें देखो, फिर भी हमारा जीवन कुछ ठीक ही था। तो ऐसे समय पर जब हम सोचते हैं कि लौकिक जीवन में भी फिर भी कुछ गुण थे, कुछ मर्यादाएं थी, कुछ एजुकेशन था, कुछ परिवार का अच्छी बातें थी, तो ये सब हमको लास्ट तक बाबा का चलता हुआ खजाना चलता। तो एक बारी किसी बहन ने दादी जानकी से प्रश्न किया, और वैसे तो वो हिंदी नहीं जानती, दादी उन दिनों में इतना इंग्लिश भी नहीं जानती थी, समझती थी, बोल नहीं पाती थी, परंतु उन दोनों का आपस में इतना गहरा कनेक्शन जो एक दो की बात को समझ सकते। तो दादी उसको जब देखा रिट्रीट सेंटर पर आई हुई है, नीचे खड़ी थी रिसेप्शन में, तो दादी जब आती थी रिसेप्शन में, दादी पहले से प्रोग्राम नहीं किसको देती थी कि मेरे साथ पैदल करने चलो, जो भी सामने होता था ड्रामा अनुसार उनका भाग्य होता था, दादी उनको इशारा देती थी, वो दादी के साथ पैदल करने जाते थे। तो दादी को बहुत पक्का था पैदल का, बहुत उसका महत्व था, तो दादी हर रोज 45 मिनट्स तो कम से कम पैदल करती ही थी। तो जब वापस लौटे दोनों का चेहरा चमक रहा था, तो मैंने पूछा आपकी बहुत अच्छी रू रेहान चली है शायद, तो दोनों ने ऐसे ऐसे किया। तो मैंने कहा क्या बताया आपको, उस बहन से पूछा, तो बहन ने कहा मैंने दादी को बोला कि बाबा ने आपके शायद ये विशेष गुण देख करके आपको चुन लिया। वो कौन से गुण? नम्रता, बड़ी दल, रहम भावना, ये तो दादी के कुछ पहले से ही गुण थे, जिस कारण से दादी का जब इतिहास सुनते हैं, कईयों ने सुना है, कईयों ने शायद पढ़ा है, एनीवे, तो दादी को कहती है कि शायद बाबा ने आपको इस कारण से चुन करके आपके द्वारा इतना सब कुछ कार्य किया है। तो दादी क्या उत्तर देती, नहीं ये मेरे गुण नहीं थे, पूर्व कल्प में बाबा ने जो मुझे गुण दिए उसके लास्ट तक कुछ अंश मात्र वो मेरे में रहे हुए थे, मेरे गुण नहीं थे, बाबा के दिए हुए गुण थे। तो आप सोचो कि बाबा ने जो हमें अविनाशी खजाना दिया है, कुछ गुणों के रूप में लास्ट तक चलता, और कुछ और भी हिसाब से हम देखते हैं अपने जीवन में कितना सब कुछ फिर भी अच्छा चल रहा, और ब्राह्मण जीवन में तो हम बाहर वालों से तो बहुत बहुत सुखी है, ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है। तो संगम युग का जो बीज है वो इतना शक्तिशाली है जो सारे कल्प में चलता। तो अब संगम युग के महत्व को भी हम समझ करके, जो समय का खजाना हर एक मानता है कि समय बहुत कीमती चीज है, हम समय को किस तरह से सफल करते चल रहे हैं, एक एक सेकंड हमारा कितना वैल्यूबल है, हम जितना समय का कदर करते हैं उतना हम वैल्यूबल बनते हैं, और यदि हम भूल जाते हैं कौन सा समय है तो वो हाथों से खिसक जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो कल बीता सो बीता, फिर 5000 वर्ष के बाद, परंतु ड्रामा ऐसे बना हुआ है कल मेरे हाथ से खिसक गया तो नेक्स्ट कल्प क्या होगा, वही बात होगी। परंतु आज यदि हम अपने समय को बहुत कीमती समझ करके घर एक घड़ी, हर घड़ी को हम सफल करते चले, तो हमारी जीवन भी अति वैल्यूबल, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट बन जाती। और समय के साथ साथ अपना श्वास, भक्ति में श्वास का बहुत महत्व रहता है, और अभी भी जो हमारा श्वास चलता है, बाबा ने क्या बोला है, श्वासों श्वास बाबा की याद रहे। तो जो मेरा श्वास चल रहा है, मेरी बुद्धि में, मेरे आंखों के सामने कौन है, बाबा है, तो वो मेरा श्वास भी सफल हो रहा है। और साथ साथ हमारी संकल्प, सारी सृष्टि कैसे बनी है। प्रकृति जो है वो तो प्रकृति, परंतु बाकी सब कुछ जो बना है, ये हॉल कैसे बना, इतना सुंदर स्टेज कैसे बना, बाहर में भी जो कुछ हम देखते कैसे बने, संकल्प शक्ति द्वारा। मनुष्य के अंदर संकल्प उत्पन्न हुआ, संगम युग शुरू हुआ। परमात्मा को जिस घड़ी संकल्प आया कि मुझे जाकर के नई दुनिया बनानी है, उस एक संकल्प से संगम युग शुरू हुआ। बस एक संकल्प की बात होती, तो हमारा भी संकल्प हो कि बस मुझे कल्याणकारी बनना है। तो कल्याणकारी में तो आप सोचो सब बातें, कितनी बातें आ जाती, परंतु मेन बात ये कि हम अपने को भरपूर करें और उस भरपूरता में हमें अपने को बिल्कुल संपन्न बना के रखना है। तो आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा ने सब कुछ दिया है, तो फिर बाबा डायरेक्टली आत्मा को यूज करके औरों तक भी पहुंचाता जाएगा। बाबा ने ये कहा है कि जैसे अंत की घड़ी आती रहेंगी, आपको इतना समय तो नहीं मिलेगा कि आप बैठ करके किसी को 7 दिन का कोर्स कराओ, उस समय अपनी दृष्टि से निहाल करना, उस समय 2 वचन बोलकर उन आत्माओं के दुख को दूर करना। तो कितनी शक्ति चाहिए दृष्टि से किसी को देवभान से दूर ले जाना, उसके दुख को दूर कर लेना। तो बाबा अभी जैसे समय चल रहा, बहुत फास्ट चला है समय, अभी कुछ चंद घड़ियां है संगम युग की बची हुई, तो हम इन थोड़े से संगम युग की घड़ियों को भी सफल करते चले, क्योंकि बहुत कुछ थोड़े समय के अंदर। मधुबन में आप सब आए हो थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय में भी अपने को जो कुछ भरना है भरते जाओ, परंतु साथ साथ अपने को ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो बाबा आपके द्वारा अनेकों का कल्याण करता रहे। किसको दुख दूर चाहिए वो आप कर सके, किसको भगवान का प्यार का अनुभव चाहिए वो आप कर सकते, जिसको शक्ति चाहिए वो दुविधा में है, समझ नहीं पाते हैं अभी मुझे क्या करना है, वो इतनी शक्ति परखने की, समझने की शक्ति चाहिए, वो जो कुछ भी उनको चाहिए मालूम तो नहीं होता, परंतु बस इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा को भी बाबा के साथ संबंध जुड़े, सब कुछ बाबा के द्वारा प्राप्त हो। तो आप कभी भी ये 3 शब्द न भूलना जो बाबा ने आप सभी को टाइटल, हम सबको टाइटल दिए हैं, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट। तो जैसे वो बात स्मृति में आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएंगी कि बाबा ने हमें कितना सब कुछ बनाया है और दिया है। ओम शांति।